यह एक रास लीला स्थली है। इधर जो पहाड़ी देख रहे हैं, दोनों तरफ जो पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ियों का नाम है सखी गिरी। ये पहाड़ियां वहां से प्रारंभ होती हैं और बरसाने तक जाती हैं, और ये पहाड़ी घूमते घूमते नंद गांव तक। कृष्ण इधर से आते हैं और जैसे श्रीमती राधा रानी आती है रात्रि के समय, और यहाँ पर रास लीला होती है। ये रास लीला का स्थली है, रास मंडप स्थली है। कुछ सौ वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा रहते थे। यह आश्रम है, उस आश्रम में नहीं जाएंगे। बाबा का नाम था नागा बाबा। नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन कम से कम वस्त्र धारण करते थे, केवल कौपीन धारण करते थे, इसीलिए उनका नाम हो गया था नागा बाबा। और उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। इसके अतिरिक्त तो उनकी एक विशेषता थी कि उनका जन्म ब्रज में ही हुआ था। वो ब्रजवासी थे, जन्म से ब्रजवासी थे। हम लोग उस गांव में जाएंगे जहां उनका जन्म हुआ था, पाए गांव। हम लोग जिस दिन शेरगढ़ जाएंगे उस दिन वहां उस गांव से, शेरगढ़ से पहले उस गांव से होकर हम गुजरेंगे। बाबा रहते थे यहाँ पर, भजन करते थे। भगवान श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करते रहते थे, जप करते रहते थे। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि रात्रि के समय कोई नहीं आ रहा था, केवल बाबा रहते थे और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते थे, जप करते थे। एक दिन उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, खूब बड़ी बड़ी जटाएं थी। एक दिन झाड़ियों में जप करते हुए घूम रहे थे, तब तक क्या हुआ, उनकी जटा थी उलझ गई झाड़ियों में। एक विशेष प्रकार का यहाँ पर पेड़ होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसमें जा रहे थे तो उनकी जटाएं उसमें उलझ गई। और उलझ गई तो अपने प्रयास उन्होंने किया, लेकिन जैसे जैसे प्रयास करते रहे उनकी जटाएं और भी उलझ दी गई। तंग आ गए, तंग आकर चुपचाप ऐसे खड़े हो गए। तो भगवान की जो इच्छा है, राधा रानी की जो इच्छा है, कृष्ण की जो इच्छा है, वैसे जब करते रहे खड़े खड़े, जटाएं उलझ गए, बैठ नहीं सकते थे। जब करते रहे करते रहे, दो दिन बीत गया। भगवान वहां आए, कृष्ण वहां आए और भगवान ने कहा कि मैं आपकी जटा को उलझा देता हूँ, तो निकाल देता हूँ। तो बाबा ने कहा, नागा बाबा ने कहा कि नहीं, हमारी जटाएं निश्चित ढंग से उलझी हुई हैं। रोज रोज घूमता था, कभी नहीं उलझती थी, आज उलझ गई है। यह लगता है कि कोई दैवी इच्छा है, इसलिए छोड़ दो, आप जटा को मत उलझाओ। हमारी जटाओं को कृष्ण ने उलझाया है, कृष्ण आएंगे तब, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तो भगवान से कह जा रहे, मैं ही भगवान, मैं कृष्ण हूँ, आप मुझे को पहचान नहीं रहे। भगवान कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं, आप मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं आपके जटाओं को उलझा देने के लिए, निकाल देने के लिए आया हूँ। भगवान, आप कृष्ण सचुच आप कृष्ण है, अब क्या मैं त्रिभुवन ललित मेरा रूप देखो, मैं बंसी बजा सकता हूँ, सचुच मैं ही कृष्ण हूँ, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। क्योंकि आप कृष्ण होते तो श्रीमती राधा रानी भी साथ होती, अलग आए हो तो यदि सचमुच आप कृष्ण हो तो यहाँ पर राधा रानी को बुलाए। आप दोनों ने मिलकर मेरी जटाओं को उलझाया है, जब श्रीमती राधा रानी आएंगी आप हाथ लगाएंगे और श्रीमती राधा रानी भी हाथ लगाएंगी जटा को निकालने के लिए, तब मैं स्वीकार करूंगा आपका। नहीं भगवान ने कहकर, मैं तो भगवान हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने बंसी में तुरंत राधा रानी और अन्य सखियां भी आ गई और सबने मिलकर नागा बाबा को जटा को यह स्थान है। हरे कृष्ण महाराज, बोलते हैं। वन का वृक्ष बने, ऐसा उसका रूप है श्रीमती राधा रानी का। कृष्ण को बहुत प्रिय है, श्रीमती राधा रानी के रंग का प्रतिनिधित्व करता है और समान वृक्ष है वह कृष्ण के रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इतना वो संकीर्ण जगह है, फिर से दूर से ही देख लीजिएगा, एक एक करके वहाँ यदि आप वृक्ष करने के जाएंगे, आलिंगन करने जाएंगे तो थोड़ा देर हो सकता है, वो संकीर्ण जगह पर है। आपके गाइड बुक में शायद उसकी चर्चा की गई होगी, किया गया है ना, किया गया तो पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है,
समाचार पूछते पूछते उन्होंने पूछ दिया
आपके जो पुत्र हैं, आपके पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, सुशील है ना, आपसे झगड़ा नहीं करते हैं ना। जब यह बात जागवल्क ऋषि पूछे तो राजा के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, रोने लगे। जागवल्क ऋषि जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ गलती कर दिया क्या। पूछा जागवल्क जी से कि आप रो क्यों रहे हैं, क्रंदन क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज और सब कुछ ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा राज्य ठीक है, हमारे पास पर्याप्त धन भी है, सेना भी है, शत्रुओं से कोई भय नहीं है, परंतु मुझे अब तक कोई पुत्र नहीं है। बड़ी चिंता रहती है कि हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, इस जन्म में पुत्र के अभाव में दुख, और पुत्र नहीं है तो अगले जन्म में मुझे उन नामक नरक में गिरना पड़ेगा, इसीलिए मुझे मैं रो रहा हूँ। आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि आपको वरदान दे सकते हैं। राजा ने ऋषि ने कहा कि जागवल्क ऋषि ने कहा कि तो आपके भाग्य में इस जन्म में पुत्र नहीं होने वाले हैं। राजा यह भी प्रार्थना किए कि भले ही मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन आप सिद्ध महात्मा हैं, मेरे भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। आप चाहेंगे तो जो लिखा हुआ उसको काट कर फिर से रीराइटिंग कर सकते हैं। लेकिन महात्मा ने समझाया कि बेटा, भगवान की जो इच्छा होती है वो होता है। राजा ने आपके पास, उनके पास 60,000 पुत्रियां थी, पुत्र एक भी नहीं है। पुत्रियां कितनी थी? 60,000। तो जागवल्क ऋषि ने कहा कि आपका बहुत भारी सौभाग्य है, आप अपनी पुत्रियों का विवाह भगवान से कर दीजिए। तो बड़े बड़े हजारों हजारों जिसके पुत्र हैं, उसे आपका कीर्ति, आपका भाग्य बदल जाएगा, आप भगवान के ससुर बन जाएंगे, पिता बन जाएंगे, अपनी पुत्रियों का विवाह आप भगवान से कर दीजिए। ऋषि को उनको महाराज बिमल को, बिमला शब्द नहीं है, बिमल, आप बिमला कह रहे थे ना, बिमल। तो राजा ने पूछा कि इसके लिए कहां, भगवान को मैं कहां पाऊंगा। तो उन्होंने बता दिया कि भगवान का अवतार मथुरा में हुआ है, और इसके साथ यही पता दिया अपनी पुत्रियों को, कह दिया जप में, कीर्तन में, भजन में लग जाए, भी ऐसी प्रार्थना करे, भगवान का जप करें ताकि उनको भगवान पति रूप में प्राप्त हो जाए। और जागवल्क ऋषि ने भगवान का परिचय बताया कि भगवान का अवतार मथुरा में हुआ है, वसुदेव जी और देवकी के पुत्र के रूप में, उनकी चार भुजाएं हैं और उनके पीताम्बर धारण करते हैं, सब आप जो भगवान का रूप होता है बन कर दिया, चतुर्भुज रूप का। और अब तो उन्होंने एक मैसेंजर, अपने दूत को भेजा मथुरा में कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे खबर लेकर आओ, फिर हम लोग सब लोग चलेंगे। और अपनी पुत्रियों को उन्होंने आज्ञा दिया कि बेटी तुम लोगों का सौभाग्य है, तुम लोगों को भगवान पति रूप में प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग को भक्ति चालू करो, भजन चालू करो। तो महाराज बिमल की 60,000 कन्याएं जप में, कीर्तन में, भगवान की भक्ति में लग गई, कृष्ण की भक्ति करने लग गई। दूत गया मथुरा में, तो मथुरा में जाकर पूछ रहा था कि लोगों से पूछ रहा था कि ये भाई यहाँ पर कृष्ण भगवान कहाँ है, वसुदेव जी कहाँ है, देवकी कहाँ है, और देवकी और वसुदेव जी के पुत्र जो भगवान अवतार लिए वो कहाँ है। मथुरा के लोग जिसे पूछने जाता था वो भगा देता था, अगर हमारे पास मत पूछे आप। तो गली में पूछते पूछते तो कुछ लोग बुलाए उसको एकांत स्थान में, कहे कि तुम कहाँ से आए हो। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चंपापुरी से, सिंध देश से, महाराज बिमल का दूत हूँ। तो लड़के हुए थे एक एक करके पंख ने काट दिया। सातवां का गर्भ साफ हो गया, गर्भ में ही पंख मार दिया। देवकी के सातवें गर्भ को पंख ने क्या किया, गर्भ में ही कोई मेडिसिन देकर या कोई उपचार करके जैसे मार दिया। और आठवां लड़का एक लड़की हुई थी वो भी आकाश में उड़ गई, कोई उनको पुत्र पुत्री नहीं है वसुदेव जी को। और तुम अपना अपनी सुरक्षा चाहते हो तो तुम वसुदेव जी देवकी और उनके पुत्र का नाम मत लो, नहीं तो पंख तुमको काट देगा। वो बेचारा दूर तो बड़ा संकट में पड़ा, लौट रहा था अगर सिंध देश जाना था। सिंध देश में जब जा रहा था तो उसे वृंदावन के तरफ से निकला, तो जैसा उसको वर्णन बताया गया था भगवान का रूप वैसा ही एक लड़का वहां पर खेलते हुए अनेक बच्चों के साथ खेलते हुए देखे और सब कुछ मिल रहा था, कोई अंतर नहीं। जैसा जागवल्क जी ने वर्णन किया था भगवान का सब खूब वैसा था, केवल एक चीज का अंतर था। वो बताए थे कि भगवान की चार भुजाएं हैं लेकिन यहाँ पर दो भुज, बस इतना अंतर था, लेकिन सब कुछ मिलता जुलता था। जाकर वो अभी पूछा, ए भाई हमको ऐसी शंका है, हमको बताया गया था कि आप जैसा रूप है वसुदेव जी और देवकी के पुत्र, आप लोगों का कोई संबंध है देवकी वसुदेव से? तो वो बच्चे हंसने लगे कि अरे कहां से पागल आ गए भाई, वो समझे कहीं कंस का तो व्यक्ति नहीं है। मतलब भाई हम लोग नहीं जानते, हम मथुरा गए नहीं तो जानते नहीं, तो देवकी कौन है वसुदेव। तो बेचारा लौट गया वहां पर। जाकर महाराज विमल से बताया कि महाराज जगदल्प जी ने बताया था मथुरा में कोई भगवान नहीं है, देवकी वसुदेव कोई पुत्र पुत्री नहीं है, है वो दोनों लेकिन उनके छह लड़के मारे गए, सातवें का पता नहीं लगा, गर्भपात हो गया और आठवां तो लड़की हुई थी आकाश में देवी। और वो अभी रिस्क भी वहां पूछने जाना या पूछना भी खतरा है, संत से मार देगा। फिर राजा बड़े दुखी हो गए, महाराज विमल की कन्याओं को ही पता लगा कि हम लोग तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान का अवतार ही नहीं हुआ, सब लोग फिर दुखी हो गए। महाराज विमल की कन्याएं, महाराज विमल की जो पत्नियां थी सब लोग, तब तक घूमते घूमते महाराज विमल से और भीष्म पितामह से मित्रता थी। एक दिन भीष्म पितामह वहां चले, भीष्म पितामह से महाराज विमल ने सारी समस्या बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, देवकी वसुदेव जी को कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जागवल्क जी ने जैसा बताया था वैसा ही एक लड़का हमारे मैसेंजर ने वृंदावन में देखा है। भीष्म पितामह जी बता गए आप चिंता मत करिए, जागवल्क जी सही बात बताए थे, भगवान का सचमुच अवतार चतुर्भुज रूप में ही हुआ था और वही भगवान वृंदावन में है। आप अब देर मत करो, जल्दी अपने विमान सजाओ, जैसे सजाओ अपनी पुत्रियों को शादी उनसे कर दो, बहुत अच्छी बात है। महाराज विमल तुरंत आकाश मार्ग से विमान लेकर आए वृंदावन में, भगवान से प्रार्थना किया कि ऐसी ऐसी समस्या है, भगवान राजी हो गए। और भगवान विमान पर चढ़कर कहां गए, चंपापुरी अपने ससुराल में सिंध देश में गए और वहां से उनका स्वागत हुआ। फिर 60,000 कन्याएं थी महाराज विमल की, उनको भगवान पुनः वायुवान से लाए कामवन में, और कामवन में भगवान ने उन महाराज विमल की कन्याओं से विवाह किया और विवाह के बाद भगवान वहीं पर रास क्रीड़ा प्रारंभ किए, रास लीला। हरि हरि बोल। वो उनके उन महाराज विमल की कन्याओं के साथ, तो पहले तो उन कन्याओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम लोगों का विवाह भगवान से हुआ, या भी बहुत प्रसन्नता हुई थी। उसके बाद और प्रसन्नता बड़ी, सचमुच विवाह हो भी गया और इसके बाद प्रेम से भगवान के साथ रास क्रीड़ा कर रही थी, तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इतना उनके नेत्रों से प्रेमास्त्र प्रवाहित होने लगे कि उनकी महाराज विमल की कन्याओं के प्रेमास्त्र से आनंद अश्रु से उस कुंड का निर्माण हो गया। उस कुंड में जो जल है, महाराज विमल उसके साथ भगवान भी रो रहे थे प्रेम से, तो भगवान कृष्ण और महाराज विमल की कन्याओं के प्रेमास्त्रों से उस कुंड निर्माण हुआ है वह कुंड है विमल कुंड। ब्रज के सर्वाधिक सुंदर कुंडों में से वह भी एक कुंड है। वहां हम रहते तो थोड़ा ज्यादा देर तक बता सकते थे ना, हमने अति संक्षिप्त जितना हम संक्षिप्त कर सकते थे उतना हमने वर्णन किया। इसके बाद एक और कथा का वर्णन करते हैं, उसको आप लोग कृपा करके बंगला भाषा में भी सुन लीजिए। अब कोई जाइएगा नहीं, इससे भी अच्छी कथा एक और है हिंदी के लिए भी। आप इस बात से परिचित होंगे, जानते हैं महाराज युधिष्ठिर जुए में हार गए थे और हारने के अनुसार उनको यह स्पष्ट था कि जो पार्टी हारेगी उसको 12 वर्ष तक जंगल में वास करना होगा और 1 वर्ष अज्ञात वास करना होगा, और जो पार्टी विजयी होगी वह हारे हुए व्यक्ति के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। युधिष्ठिर महाराज हार गए, उनका राज्य का उनके राज्य का उत्तराधिकारी दुर्योधन हो गए और युधिष्ठिर महाराज जंगल में आ गए। 12 वर्ष तक भिन्न भिन्न जंगलों में व्यतीत किया। तो अपने वनवास काल के कुछ समय तक महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ यहाँ पर काम वन में निवास किए थे। जब महाराज युधिष्ठिर काम में वन में निवास कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, उसी समय उनके गुरु उनके पुरोहित धौम्य ऋषि आए थे। धौम्य उनके पुरोहित है, कुल पुरोहित है, तो गुरु जो कुछ चाहिए वो आए हुए थे। और युधिष्ठिर महाराज उस समय तक काम्य वन में कई पेड़ के नीचे निवास करते थे, घूमते रहते थे, कोई निवास स्थान नहीं था, लेकिन पेड़ के नीचे सुबह का समय था। कई एक दिन से आए थे, उसी दिन नहीं आए थे, कई एक दिन से आ रहे थे, वो आए हुए थे, वहां पर आते थे, बढ़िया से सत्कार करते थे, उनसे कथा सुनते थे युधिष्ठिर महाराज। एक दिन की बात है, सभी लोग प्रभात काल में बैठे हुए थे। हाँ, एक उनका एक व्रत था प्रतिदिन का होम ऋषि का। अपने साथ वे एक अरणी काष्ठ, एक विशेष प्रकार का की लकड़ी होती है जिसको रगड़ने से घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है, तो दो लकड़ियां लाए थे जिसको रगड़कर आग उत्पन्न करते थे और उसी अग्नि से प्रज्वलित करके वे अग्निहोत्र करते थे। दैनिक यज्ञ छोटा सा लोग गृहस्थ लोग करते हैं ना, दो चार दस मिनट के लिए यज्ञ, इसे अग्निहोत्र भी करते। वो ऋषि थे धौम में ब्राह्मण, अग्नि उत्पन्न करते थे, अग्नि के बाद अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे, इसके बाद ही कुछ पानी पीते थे अथवा खाते थे, उसके पूर्व कुछ नहीं। प्रतिदिन हो रहा था, एक दिन सुबह का समय था, अभी उन्होंने अग्निहोत्र नहीं किया हुआ था। सभी भाइयों के साथ जो द्रौपदी बैठी थी, पांचों भाई बैठे थे और एक पेड़ के डाली में लटका दिया था, रख दिया था वो अपने अरणी काष्ठ को। उसी समय क्या हुआ कि एक हरिण घूमते घूमते आया, तो डर नहीं रहा था, साथ वो खुजला रहा था अपना सिर पेड़ में। तब तक खुजलाते समय क्या हुआ कि जो काष्ठ रखा हुआ था, अरणी लकड़ी रखी हुई थी, लकड़ी को बंगला में काठ काठ जो रखा हुआ था वो उसके सिंह में उलझ गया, हरिण के सिंह में उलझ गया। तो हरिण के सिंह में उलझ गया तो थोड़ा ऐसे घूमने लगा, बाहर जाने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज भाइयों ने देखा कि हरिण के काष्ठ है वो कहाँ चला गया, हरिण के सिंह में चला गया काठ, तो जंगल में भाग जाएगा, कहीं खो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यही बैठे हुए इसको पकड़ लो हरिण को, और उसमें से जो काठ है उसको निकाल लो। लोग चारों लोग घेरने का प्रयास किए तो वो छलांग मारकर भाग गए जंगल में और लकड़ी के साथ। तो भारी चिंता हुई, काष्ठ चला गया मतलब अग्नि नहीं उत्पन्न होगा, किसी अग्नि से वो अग्निहोत्र नहीं करते थे, अग्निहोत्र गुरु जी नहीं करेंगे, अग्निहोत्र नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, तो अतिथि देवो भव
आए हैं, गुरु आए हैं, वो हमारे घर में उपवास करेंगे। गृहस्थ के लिए बहुत लज्जा की बात होगी ना, खाए पिएंगे नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े व्यतीत हो गए। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दिया अर्जुन को, गांडी उठाओ, किस दिन काम आएगा, किसी भी कीमत को लकड़ी को प्राप्त करना है, वो जंगल में मत घुस जाए। इसके बाद भीम पांचों भाई अपने अस्त्र धारण कर लिया है, कुछ हरिन को पकड़ लेना है और काठ को हस्तगत कर लेना है। ये लोग पांचों भाई उसको पकड़ने का प्रयास करने लगे सुबह से, लेकिन वो हरिन इतना जंगल में, घोर जंगल में घुस गया, साथ कभी दिखाई पड़ता था, वहां भागता था, जैसे तैसे पता नहीं। ऐसे करते करते प्रयास करते दोपहर का समय हो गया, 12 बज गया। बड़ी चिंता थी, गुरु जी यहाँ पर भूखे बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, और 12 बजते बजते युधिष्ठिर महाराज सभी को जोर की भूख और प्यास लगी। और इन लोगों का भी व्रत था कि जब तक गुरु को कुछ खिलाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं खाएंगे। फिर जोर की प्यास लगी, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज को इतनी प्यास लगी कि युधिष्ठिर महाराज का गला सूखने लगा। अब ऐसा लगता था कि प्राण निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अब तो दूसरी समस्या, काश गुरु जी वहां बैठे हैं, अब तो युधिष्ठिर महाराज के प्राणों पर आ गए, जिनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी चारों भाई इकट्ठा हो गए, युधिष्ठिर महाराज को एक पेड़ के नीचे सुला दिया, जैसे प्यास लगी है वही पानी लेंगे जंगल में। सो नहीं गए ना, नींद नहीं आ रही ना, मैं बंद कर सकता हूँ, चिंता नहीं। तो अब क्या किया जाए, दूसरी समस्या है, लकड़ी की समस्या तो गई, काठ की समस्या तो बाद, अभी युधिष्ठिर महाराज के प्राणों की रक्षा करना है, उसके लिए जल का अन्वेषण करना है। तो उस समय बहुत लंबा पेड़ था, उसके पेड़ पर नीम चढ़ गए और ऊपर से देखे कि कहीं आजू बाजू में जलाशय है कि नहीं। तो ऊपर चढ़ गए, ऊपर से ने देखा कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर जलचर पक्षी की आवाज आ रही है और उधर उड़ रहे हैं। उन्होंने अनुमान किया कि उधर कोई जलाशय होगा। एक पक्षी होते हैं जो जल में निवास करते हैं, जलचर पक्षी। तो तुरंत ही पेड़ से उतर आए और अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को तरकस, तरकस समझते हैं ना, जिसमें बाण रखा जाता है, एक चमड़े का थैला होता है पीछे रखते हैं क्षत्रिय लोग, उसमें बाण सजा कर रखते हैं। तो तरकस दिया, उनको आज्ञा दिया और सबको प्यास लगी थी, अर्जुन भी छटपटा रहे थे, भीम भी छटपटा रहे थे, नकुल और सहदेव प्यास के बिना। सहदेव को कहा गया, सहदेव तुम जाओ इस तरकस लेकर, पहले अपने प्राणों की रक्षा करना, तुम पानी पी लेना और वहां से पानी लाना, जैसे श्री महाराज की प्राण की रक्षा के लिए। सहदेव वहां गए तो सचमुच एकदम इतना बढ़िया जलाशय था, विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे जलाशय में, विविध प्रकार के पक्षी उसमें विहार कर रहे थे, हंस इत्यादि। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि उसका जल कितना साफ था, कितना साफ था कौन बता सकते हैं। लिखा गया महाभारत में जल का जलाशय कितना स्वच्छ था, जितना महात्माओं का हृदय मन शुद्ध होता है, यही वर्णन किया गया साहित्य रूप में। कितना कितना स्वच्छ था, अंग्रेजी में क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, लेकिन महाभारत में लिखा हुआ है कि जल इतना स्वच्छ था जितना कि महात्माओं का हृदय शुद्ध होता है। सहदेव गए तट पर और तुरंत ही अपने अंजलि से पानी भर लिया और होठों पर पीने ही वाले थे, तब तक जलाशय के दूसरे किनारे से एक गंभीर वाणी आई, एक जलचर पक्षी जो दूसरे किनारे पर बैठा था, जलाशय के दूसरे किनारे पर स्नान पीने का प्रयास कर रहे थे, दूसरे किनारे बैठा था, उसने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, सहदेव मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ, मैं इस जलाशय का मालिक हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो। लेकिन इतने प्यासे थे, अब लगभग होठों से लगा ही लिए थे, तो उनकी वाणी का अतिक्रमण करके, उसका तिरस्कार करके उन्होंने जल पीने का प्रयास किया। तो जो भी जल को पिए उसी समय सहदेव मूर्छित होकर गिर पड़े, मृत्यु हो गई।
सहदेव की मृत्यु और वो चार भाई वहाँ है, तो फिर वो कोई सूचना देने वाला भी नहीं था क्या। वो बहुत देर तक प्रतीक्षा करते, प्रतीक्षा देर हो रही थी, तो सुना नकुल को भेजा गया कि नकुल जाओ सहदेव कहाँ, जल्दी जाओ अपने प्राणों की रक्षा करो और वहां से जल लाओ। सहदेव वहां गए, तो सहदेव वह दृश्य देख कर बड़े प्रतीत हो गए, रोने लगे। हाँ मैं बाद में नकुल ने देखा कि हमारे भाई मृत्यु हो गई है, किसी ने मार दिया है, बहुत व्यतीत हो गए, लेकिन अब रोने का भी समय नहीं था। तो जल्दी उन्होंने तरकस है उसमें पहले जल पर, जल के तट पर गए, जलाशय के तट पर गए, पानी लिए। जब होठों से लगाने वाले थे तब तक पुनः यक्ष ने, जलचर पक्षी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नकुल पानी पीने का मत प्रयास करो, मैं इसका स्वामी हूँ। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने पानी पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाई की हुई है। लेकिन इतने प्यासे थे और अमर्श था कि मैं क्षत्रिय में तुम दुख देख लूंगा, हमको कुछ करोगे तो मैं भी तुमको मार दूंगा। ऐसा कहो उन्होंने जो ही पानी पिया गिर पड़े। फिर इसके बाद वहां पर खबर देने वाले भीड़ वहां थे, अर्जुन भीम और युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज तो श्रेष्ठ जैसे हो रहे थे। फिर देर होने लगा तो भीम ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन अपना गांडीव धारण किए और तट पर गए। देखे कि उनके दो भाइयों को किसी ने मार दिया है, उनको पता नहीं था उस समय से किसी ने मार दिया। इसके बाद वो फिर भी जो कुछ करना है तो युधिष्ठिर महाराज के प्राणों की रक्षा करना है। भीम अर्जुन गए वहां पर, अपने अंजलि में जल लिए और जब पीने ही वाले थे तब तक ठीक उचित गंभीर वाणी से यक्ष ने कहा, अर्जुन तुम इस जलाशय का जल नहीं पी सकते हो, यदि पीना चाहते हो तो मेरे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दो और तुम्हारे प्रश्नों से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं आज्ञा दूंगा तब जल पी सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्जुन किसकी बात समझ रहे, गांडीव विश्व के सबसे बड़े आर्चर, धनुर्विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता, महाराज पांडु के पुत्र, इतना अमर्श था कि मेरा क्या कर सकता, मैं शिव जी को भी संतुष्ट किया हूँ, एक बार भगवान शिव से भी युद्ध में शिव जी संतुष्ट हो गए थे, हमको क्या कर सकता, मैं पीता हूँ, देखो तुम क्या करते हो। अर्जुन लगाए और इसके बाद भीम आए। भीम से अब अर्जुन नहीं माने तो भीम कौन मानने वाले थे, उतना ही तो थोड़ा सा उदंड थे। आए ठीक वही बात हुई रिपीट करने के बाद चारों भाई लेट गए। युधिष्ठिर महाराज अकेले जैसे आ रहे हैं तो दैव जो किसी दिशा में देर हो रहा है, तो जैसे क्रॉलिंग करते हुए चलते हुए महाराज वहां पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज उसके तट पर पहुंचे, जलाशय के लगा कि उनके वायर से पृथ्वी खिसक गई, इतना दुखी हुए। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारी विलाप किए, महाभारत पढ़ेंगे तो कहे है ऐसा बात कि हमको बहुत बड़े ज्योतिष लोग कहते थे कि जंगल का बात पूरा होगा और सब आप लोग लौटे हुए, पुनः आप लोगों को राज्य मिलेगा, पुनः द्रौपदी राज रानी बनेगी और आप लोग राज्य करेंगे। लेकिन सारी भविष्यवाणियां, सारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिथ्या चले गए, हमारे चार भाइयों की मृत्यु हो गई, अब मैं अकेला कैसे जाऊंगा। बहुत बड़ा उन्होंने विलाप किया। इसके साथ मैं कुंती जी को क्या कहूंगा, मातरी की तो खैर मृत्यु हो गई, लेकिन कुंती को मैं क्या, मेरी माँ को क्या बताऊंगा, माँ हस्तिनापुर में थी विदुर जी के संरक्षण में, मैं उसको क्या बताऊंगा, अकेले लौटूंगा कि मैं उनके पुत्रों को खोकर आया हूँ। बहुत ऋषि महाराज रोने लगे, लेकिन अंत में गए, जैसे ट्रेवलिंग करते हुए तट पर गए और उठाए जो प्राणों की रक्षा तो करनी ही करनी है, जल उठाए दोनों हाथों से, जल उठा लिए, लगभग कर ही दिए थे तब तक पुनः यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर सावधान रहो, मेरी आज्ञा के बिना, मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो, यदि तुमने जल पीने का प्रयास किया तो तुम्हारा प्राण तो फिर लगभग उड़ने को थे, इतना बिछैन से छिप्त थे, लेकिन इतना शिष्ट व्यक्ति थे कि आप स्वामी है, आपका जल है, आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं सुनूंगा। उस जल को सुना, अंजलि का जो जल था छोड़ दिए। कहे कि ठीक है महाराज, यक्ष आप पूछिए, जैसे भगवान ने हमको कुछ विद्या दी है, मैं प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का। यक्ष का यह केवल प्रश्न सुन लेना नहीं, यक्ष ने यह कहा था कि जब आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं आज्ञा दूंगा तब पीना हो। जिससे महाराज शक्ति के पानी पर फेंक दिया, उनका जलाशय लौटा दिया जो अंजलि में था। उसके बाद वहीं पर एक स्थान है धर्म कुंड, गए होंगे तो नहीं भी गए होंगे। कुंड के एक तरफ यक्ष बैठे और दूसरे तरफ युधिष्ठिर महाराज और उनके चार भाई, मृत अवस्था में चार भाई। महाभारत आप पढ़ेंगे तो सैकड़ों सौ से ज्यादा प्रश्न किए गए हैं, बहुत बहुत प्रश्न उसने किए। अंत में उसने कहा कि चार प्रश्न, संतुष्ट हो गया। सैकड़ों प्रश्न एकदम युधिष्ठिर महाराज बढ़िया से उत्तर देते गए। अच्छा अच्छा व्यक्ति, अंतिम युधिष्ठिर, चार मेरे प्रश्न है, चार प्रश्नों का उत्तर दो और तुम पानी पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते। तो चार प्रश्न में तो मुझे ख्याल है, मैं सुना था कि महाराज चार प्रश्नों की चर्चा किए थे, प्रकाश महाराज किए थे ना?
नहीं,
एक प्रश्न की चर्चा, चार अंतिम प्रश्न था। हम केवल प्रश्न को आपको पूरा देते, उत्तर आप लोग ढूंढिएगा। पहला प्रश्न था कि रास्ता कौन सा है, कह पंथ, रास्ता क्या है, क्या रास्ता इसका क्या है। महाजनोन ये नगता सपंथा, रास्ता कौन है, जिस रीत महाराज रास्ता वो है जिस पर बड़े बड़े महात्मा लोग चले हैं। तर्को प्रतिष्ठो ऋषयो विभिन्ना नाशो ऋषि यश मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो जीन गंथा। जिस रास्ते से महाजन लोग बड़े बड़े गए हैं वह रास्ता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सुखी कौन है, दुनिया में सुखी कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो कहा है वह उन्होंने कहा है कि भले ही उसे दिन में एक बार साग पात खाकर पेट भरना पड़ता है, यदि उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, लोन नहीं है और प्रदेश में नहीं है तो बहुत सुखी है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न वार्ता क्या है, न्यूज क्या है, रिसेंट दुनिया में न्यूज क्या है, समाचार क्या है। तो वहां भी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, दुख है, यही है कि सभी लोग दुखी हैं। और चौथा प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था, वो प्रश्न क्या था, किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्या है। ऐसे आपको उत्तर देना होता तो आप पहले विख्यात है ना, सात वंडर है ना, उसमें से आगरा के पास में भी, आगरा में भी था, सात आश्चर्य की बातें कही जाती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने नहीं कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज जी चर्चा कर चुके हैं ना, क्या अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम अपरे स्थावर मिच्छन्ति किमा आश्चर्य तत्पर पर उससे आश्चर्य क्या हो सकता, उसकी चर्चा हो चुकी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने वो कहा कि चारों फाइनल चार प्रश्न है, चारों प्रश्न का युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर मैं आपके शीर से आपके स्वभाव से सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ, आप पानी पी सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा कर। युधिष्ठिर महाराज पानी पिए तो प्राण पखेरू, अब पक्षी उड़ने वाले थे, प्राण की तुलना पक्षी से की गई है, तो उस पर उड़ने वाली थी पक्षी, क्या उड़ने वाला था पंखी, लेकिन रुक गया, संतु से पानी पिए तो सब स्वस्थ हो गए। यक्ष थोड़ा नजदीक आए युधिष्ठिर महाराज से, अब तीन भाई की जलाशय का तट है, चार भाई मृत पड़े हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज जीवित है और यक्ष सामने खड़े हुए। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर सचमुच जेंटलमैन व्यक्ति हो, भद्र अच्छा व्यक्ति हो, मैं आपसे अतिशय प्रसन्न हूँ, प्रसन्न में आपके तो जीवन की रक्षा हो ही गई, लेकिन मैं आउट ऑफ वे जाकर इतना अच्छा व्यवहार किया है, इतना बढ़िया संसर दिया है कि मैं आपको देना चाहता हूँ। वो है कि अब चार आपके माँ भाई मरे पड़े हैं, तो कहिए किसी एक को मैं जीवित कर दूंगा। आपके सुशीलता के कारण, आपके भद्र व्यवहार के कारण चार मरे हैं, मैं एक को जीवित कर, आप चयन कीजिए, बताइए चारों में से किसको जीवित करना है। जिससे महाराज सोच थोड़ा सोचा, उपाय नकुल अथवा सहदेव में से किसी को जीवित करना है। समय चार कौन कौन मरे पड़े थे, नाम लिखिए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, किसको जीत करना है, एक को। कहे कि उन्होंने कहा किसी एक को, तो दोनों में से किसी एक को कर। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि नकुल को उन्होंने कहा था, लेकिन दोनों में से किसी को एक जीत। यक्ष को यक्ष ने समझाया उनको, यक्ष ने कहा युधिष्ठिर ऐसी बात है कि आप 12 वर्ष बाद 13 वर्ष बाद लौटेंगे ना, युद्ध राज नहीं देने वाला है, युद्ध होगा। ऐसे युद्ध में तो युद्ध में नकुल और सहदेव ज्यादा काम नहीं आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन है, गांडीव शिव को संतुष्ट किया है, इसको जीव करा लो। और नहीं तो भीम इसके समान किसी में बल नहीं है, काम आएगा राज प्राप्ति में। और दूसरी यह बात है कि गुणों में भी और कृष्णों से शेष है, और सब कुछ छोड़ दिए आपके अपने सगे सहोदर भाई, ये दोनों है ना। अरे वही भाई है, ठीक है, लेकिन सौतेले भाई है, थोड़ा नाता दूरी है ना। सब तरह से गुण में और नाता में श्रेष्ठ ये है, आपके नजदीक है, इन दोनों को सहन में जीत कर देना, केवल एक को जीत करना है। महाराज पुनः सोचे, ठीक है आप कहते हैं मैं लौटूंगा, दुर्योधन हमको राज्य नहीं देगा, तो मैं जीवन भर भिक्षा के भिक्षान पर भी निर्वाह कर लूंगा, लेकिन नकुल सहदेव में से किसी को जीत के नहीं। फिर यक्ष ने कहा कि देखो सेंटिमेंटल मत करो, मुस्का मत करो, काम की बात होना चाहिए, इन दोनों को कहो तुम्हारे सौतेले भाई हैं, उनको छोड़कर ये अब तुम्हारे सहोदर भाई हैं, सुनती भी खुश हो जाए कि उसके पुत्र जीत हो तो है, मातृ तो फिर ही मर गई है, नहीं है इनमें से किसी भी मार्ग नहीं। तो जैसे पूछा कि आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं, भक्त क्यों कर रहे हैं, जैसे महाराज ने कहा कि मेरी दो माताएं थी, है कुंती, कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ, तो मेरी माँ कुंती पुत्रवती बनी रहेगी, किसकी संतान परंपरा चलेगी, और उन दोनों में से कोई जीवित हो जाएगा तो मातृ यदि वो नहीं है लेकिन उसकी भी कुल परंपरा वर्तमान रहेगी, और मैं अपनी मातृ के प्रति अपनी माँ के प्रति अन्याय नहीं कर सकता हूँ, भले वो न हो आप जीवित नहीं हो लेकिन उसके पुत्र जीवित होना चाहिए, चाहे उसे जीवन भर किसी तरह जंगल में भटकना पड़ेगा, दुख से समुद्र में निमग्न रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दोनों में से किसी को जीत दीजिए, यदि नहीं करना चाहते हैं तो जरूरी, लेकिन मैं नकुल और सहदेव इन्हीं में से अर्जुन और भीम नहीं, इन्हीं में से किसी को जीत कर दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है आपकी आज्ञा। प्रत्येक पाते हैं वेद भाई नकुल जीत हो गए, और नेक्स्ट मोमेंट पर कहा कि जो अच्छे व्यक्ति हो, मैं चारों को भी जीत सकता हूँ, मैं धर्म से मैं सकता हूँ। चारों वैसे बैठ गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति चक्कर बैठ जाता है ना, सोया हुआ व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति नहीं, सोया हुआ व्यक्ति ऐसे बैठ जाता है, ऐसा आईजी नथिंग है घर पे, ऐसा लगा तुम तो कुछ हुआ ही नहीं है। और जब यह हुआ यक्ष था धर्म, युधिष्ठिर महाराज धर्म के पुत्र थे, हरिण के रूप में प्रकट हो गए, और जो हरिण था वो हरिण के रूप में कौन था, इंद्र, इंद्र सूरत लकड़ी हुए थी, ये आपका लकड़ी आप लकड़ी है ना, ये सारी व्यवस्था की गई थी इसी परिवेश में डालने के लिए, जैसे आप इस परिवेश में इस क्रिटिकल सिचुएशन ये आपकी लकड़ी है और जाइए गुरु जी को वहाँ पर भोजन लेकर कराइए और हम लोग पूरा पूरा प्रसन्न है, धर्मराज प्रसन्न हो गए और इसके साथ सभी लोग देवता लोग प्रसन्न है। वहाँ यह संवाद अब अच्छा था कि हम हर एक साल हमें जानते हैं ना हर साल तीन दिन रुकते थे, अच्छा होता है कि हम कुंड के तट पर ही बैठ कर पाए होते, लेकिन कल ऐसी परिस्थिति रही गांधी जी आ गया पटेल भी गिर गया और भी दो दो चलना और कठिन काम था नहीं हो सका, और भी बहुत सी बातें हैं हम की चर्चा करेंगे तो हम लोग विलम्ब होंगे। 8:30 बजना है, हम लोग को 9:30 बजे तक ललिता सरस्वती के गाँव में पहुँचना है।